بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारे पेज का एड्रेस है facebook.com/irib हिंदी। दोस्तों, आज सोमवार है, नवंबर की 2, आबान माह की 12 और रबी अव्वल की 16 तारीख। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीति चर्चा के उपरांत आप पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के शुभ जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विश्व दर्पण। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। कई देशों को ईरान का कड़ा संदेश, अपनी सीमाओं पर हम आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान में कोरोना से होने वाली मौत का फिर रिकॉर्ड टूट गया। मायावती ने भाजपा से गठबंधन का खंडन किया। काबुल में आतंकी हमला, 20 हताहत, 40 घायल। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के उत्तरी सीमाओं पर आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में बार बार चेतावनी देते हुए उल्लेख किया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान इस बारे में बेहद गंभीर है और इसे हल्के में कोई न ले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खदीब जादे ने सोमवार को पत्रकारों के साथ साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलाके में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में ईरान की चिंता बनी हुई है, और अगर हमने बाकू और येरवान ही नहीं अन्य देशों की राजधानियों को भी अपनी इस चिंता से अवगत करा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी प्रकार कराबाख के बारे में ईरान की शांति योजना पर आजरबैजान और आर्मेनिया के उत्तर के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए आशा प्रकट की है कि अगले हफ्तों में इस क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी प्रकार बताया कि विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ मंगलवार को लैटिन अमरीका जा रहे हैं, जहां वो बोलीविया के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद क्यूबा और वेनेजुएला की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री की बोलीविया की यात्रा इस बात का सबूत है कि दोनों देश उच्च स्तर पर अपने संबंधों को ले जाने का संकल्प रखते हैं। ईरान में अमरीकी जासूसी के अड्डे पर कब्जे की वर्षगांठ के अवसर पर सांसदों ने अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए। 4 नवंबर सन 1979 में ईरानी छात्रों ने ईरान में इस्लामी क्रांति के खिलाफ षड्यंत्रों की वजह से तेहरान में अमरीकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था, जो वास्तव में क्रांति के खिलाफ जासूसी का अड्डा बन गया था। ایران کے اپ سنسد سبھاپتی امیر حسین قاضی زادے ہاشمی نے سوموار کو سنسد کی کھلی کارروائی میں کہا کہ 4 نومبر امریکی ورچسو اور لگ بھگ ایک صدی سے ایرانی جنتا سے اس کی دشمنی اور اسی طرح دنیا کی سامراجوادی شکتیوں کے کھوکھلے دبدبے کے انت کا پرتیک ہے۔ سواستھ منترالے کے پروکتا نے بتایا کہ ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں میں لگ بھگ 8,000 سے ادھک لوگ کورونا سے سنکرمت ہوئے جبکہ 440 لوگ کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر سیما زادات لاری نے سوموار کو ایران دیش میں کورونا کے تازہ آنکڑوں کا بارے میں بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کی 8,289 نئے معاملے سامنے آئے، جن میں سے 3,023 کو اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا جبکہ باقی انے کو آوشک نردیشوں کے ساتھ ہوم آئسولیشن میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب ایران میں کورونا کے کل مریضوں کی سنکھیا 6,28,780 ہو گئی ہے۔ سواستھ منترالے کے پروکتا نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ایران میں 440 لوگوں کی کورونا کے گھاتک وائرس کے کارن موت ہو گئی جبکہ جو اب تک کا ریکارڈ ہے۔ ڈاکٹر سیما سادات لاری نے بتایا کہ اب دیش میں COVID-19 سے مرنے والوں کی کل سنکھیا 35,780 ہو گئی ہے۔ ایرانی وایو سینا نے فدایان حری میں ولایت یدھ ابھیاس کے دوران سودیشی راکٹوں سے کالپنک دشمن کے اسٹریٹجک لکشوں کو دھوست کر دیا۔ فدائین حری میں ولایت یدھ ابھیاس سوموار کی صبح صادق آل محمد کے نام سے کیندری ایران کے اصفہان میں شروع ہوا۔ یدھ ابھیاس کے پروکتا بریگیڈیئر فرہاد گدرزی نے F-5 اور سائقہ یدھک ویمانوں دوارا کالپنک دشمنوں کے ٹھکانوں پر راکٹ و بموں سے حملے کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ F-7 ویمانوں کو اسمارٹ بموں، سٹیک نشانہ لگانے والے راکٹوں سے لیس کیا گیا ہے اور یوا پائلٹوں نے دشمن کے گھیرے کے بھیتر جا کر اسٹریٹجک لکشوں کو سفلتا سے دھوست کیا۔ زین شاسن کے سرکشا حلقوں نے کہا ہے کہ جہاد اسلامی سنگٹھن کے کمانڈر کی پہلی برسی قریب آنے پر انہیں غزہ کی اور سے حملے کیے جانے کو لے کر گہری چنتا ہے۔ اسرائیلی سماچار پتر ہارٹس نے سرکشا سوتروں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کے سرکشا حلقوں کو اس بات کی گہری چنتا ہے کہ امریکہ میں راشٹرپتی چناؤ کے اوسر پر غزہ کی اور سے نئے حملے شروع ہو سکتے ہیں۔ ان سوتروں کا کہنا ہے کہ فلسطین کا جہادی اسلامی سنگٹھن اپنے کمانڈر بہا عطا ابوالعطا کی شہادت کی برسی کے اوسر پر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سمے یہ سنگٹھن آگ برسانے والے بیلون اسرائیلی کھیتروں میں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قراباخ میں جاری یدھ میں سیریائی آتنکیوں کو پریوگ کرنے کے آروپ کے بیچ روسی سماچار ایجنسی نے بندی کے بیانوں کے آدھار پر ایک لڑاکے کو قراباخ میں لڑنے کے لیے کتنی رقم دی جاتی ہے بتایا کہ ایک لڑاکے کو قراباخ میں لڑنے کے لیے کتنی رقم دی جاتی ہے۔ قراباخ میں گرفتار ایک بندی نے بتایا کہ اسے یدھ میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں ڈالر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسپوتنک سماچار ایجنسی کے انوسار آرمینیا کے رکشا منترالے کے پربھاری شوشان اسپوتنیان نے بتایا کہ قراباخ سینا دوارا کرائے پر بلائے گئے ایک سرکاری چھاپہ مار کو بندی بنا لیا گیا معاف کی جگہ ایک سیریائی چھاپہ مار کو بندی بنا لیا گیا اور اس نے بتایا کہ اسے رقم دینے کے وعدے کے ساتھ قراباخ لایا گیا ہے۔ سعودی عرب اور سنیکت عرب امارات پشچمی و اسرائیلی بلوں سے گٹھ جوڑ کر کے کھیتر میں اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش میں ہیں، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ٹیکہ کاروں کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پشچم و اسرائیل کے گٹھ جوڑ کر کے اس علاقے میں ایک وشیش استھتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اپنا پورا دھیان کچھ عرب دیشوں میں آتنکواد والگاواد کے ہر سمبھو سمرتھن اور حالات کو اشانت بنانے پر کیندرت کر رکھا ہے۔ عراق کے سویم سیول ہرشد الشابی نے دیش کے پشچمی پرانت امبار میں آتنکوادی گٹ داعش کے باقی بچے تتووں کے خلاف ویاپک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے انوسار عراق کے سویم سیول ہرشد الشابی کے میڈیا سیل نے سوموار کو ایک بیان میں کہا کہ سویم سیول کی 7ویں اور 2ری بریگیڈ کے جوان امبار پرانت کے پوروی کھیتر میں ہونے والے داعش ورودی آپریشن میں بھاگ لے رہے ہیں۔ یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کے ادھیکش اور پورو مکھیہ منتری مایاوتی نے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ملے ہونے کا کھنڈن کیا ہے۔ اتر پردیش میں ودھان سبھا کی 7 سیٹوں پر منگلوار کو متدان ہوں گے۔ مایاوتی نے کہا کہ ان کی پارٹی بھاجپا کی وچار دھارا کے وپریت ہے اور بھوش میں ودھان سبھا یا لوک سبھا چناؤ میں بھاجپا کے ساتھ کبھی گٹھ بندھن نہیں کریں گی۔ سوموار کو پترکاروں سے بات کرتے ہوئے مایاوتی نے کہا کہ اپ چناؤ میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس ہماری پارٹی کے خلاف سازش میں لگی ہے اور غلط ڈھنگ سے پرچار کر رہی تاکہ مسلم سماج کے لوگ بسپا سے الگ ہو جائیں۔ بھارتی سینا پرمکھ جنرل ایم ایم نروڑے सीमा विवाद के बीच इस सप्ताह नेपाल का दौरा करेंगे। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस दौरे पर नरवणे को नेपाली सेना के जनरल पद से सम्मानित किया जाएगा। जनरल नरवणे अपने नेपाल दौरे के दौरान 5 नवम्बर को प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित काबुल विश्वविद्यालय में ईरानी पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह पर होने वाले धमाके में 20 छात्र के हताहत और 40 के घायल होने की सूचना है। सूत्रों का कहना है कि धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अकमल शमसूर ने बताया कि हमले के परिणाम में दसियों लोगों के घायल होने की सूचना है। उधर काबुल में ईरान के दूतावास ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने अपने देश के नागरिकों को अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर इस देश की यात्रा की ओर से चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि 3 नवंबर के चुनाव के बाद अमरीका में अशांति पैदा हो सकती है, इसलिए वे इस देश की यात्रा के बारे में सतर्क रहें। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया कि वर्तमान समय में अमरीका जाने वालों को अशांति, आतंकवाद और कोविड-19 जैसा 3 खतरा हो सकता है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के मध्य बोलते हुए कहा है कि अगर मैंने चुनाव जीता तो ऐसा उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से होगा। जानकार हलकों का कहना है कि ट्रंप जनता के मतों से नहीं जीते तो वे अमेरिका की फेडरल अदालत के आशीर्वाद से जीतेंगे।
We won't know. We might not know for months because these ballots are going to be all over.
इसराइल के भीतर संकटों के समाधान में अक्षम होने के कारण हजारों जानियों ने तेल अविव, कुद्स, हैफा और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्रों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में तेजी आ गई है। बिहार विधानसभा के मतदान का दूसरा चरण कल 3 नवम्बर को होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके लिए चुनावी प्रचार जारी है।
हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के मध्य बोलते हुए कहा है कि अगर उन्होंने चुनाव जीता तो ऐसा उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से होगा। जानकार हलकों का कहना है कि ट्रंप जनता के मतों से नहीं जीते तो अमेरिका के फेडरल अदालत के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार इन हलकों का कहना है कि ट्रंप अपनी हार से चिंतित हैं, जिसका औचित्य दर्शाने के लिए उन्होंने कहा है कि धांधली होने की स्थिति में ही वे चुनाव हारेंगे। समीक्षा पेश करें साथ ही हसन अब्बास।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में कुछ ही समय बचा है। रोचक बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को इस देश की फेडरल अदालत के प्रयासों का नतीजा मान रहे हैं और उन्होंने पेंसिल्वानिया राज्य में अपने समर्थकों के मध्य बोलते हुए कहा कि अगर मंगलवार को या उसके थोड़ी देर के बाद मैं विजयी होता हूं तो उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से ऐसा होगा। ट्रंप की बातों का सीधा संकेत व संदेश यह है कि अमेरिका में होने वाले चुनाव में फेडरल अदालत हस्तक्षेप कर रही है। साथ ही ट्रंप ने बारंबार चुनाव में धांधली व घपले की बात कही है।
Take a look at what happened in Manhattan. Take a look at what happened in New Jersey. Take a look at what happened in Virginia and other places. They're not losing 2%, 1%, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40%.
उन्होंने यहां तक स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके प्रतिस्पर्धी की ओर से बड़े पैमाने पर धांधली होने की स्थिति में ही वे चुनाव हारेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की ओर से इस प्रकार का बयान चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने के संबंध में गंभीर चिंता उत्पन्न होने का कारण बन गया है। प्रतीत यह हो रहा है कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो वे मतदान में धांधली का आरोप लगाकर इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और रिपब्लिकन इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि पोस्टल वोटों या मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बहुत से मतों को अमान्य घोषित कर दें ताकि ट्रंप के चुनावी प्रतिस्पर्धी जो बाइडेन को विजयी होने से रोका जा सके। मिनिसोटा राज्य की डेमोक्रेट सीनेटर एमे क्लोबाचर कहती हैं कि कोरोना महामारी के दौरान रिपब्लिकन पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे अमरीकी लोगों का मतदान करना कठिन से कठिन हो जाए। रिपब्लिकन पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के कंजर्वेटिव न्यायाधीशों से विशेष उम्मीदें लगा रखी हैं। इस समय अमरीका की फेडरल अदालत के दो तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्राध्यक्षों ने ही की है जबकि एक तिहाई को स्वयं ट्रंप ने नियुक्त किया है। ऐसा लगता है कि अगर इस साल होने वाले मतदान का मामला अमेरिका की फेडरल अदालत में गया तो वहां मौजूद न्यायाधीश ऐसा फैसला सुनाएंगे जिसमें ट्रंप विजयी बताए जाएंगे। 20 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपने पिता सीनियर बुश के प्रभाव का लाभ उठाकर राष्ट्रपति बन गए थे। ऐसा लगता है कि वही खेल फिर दोहराया जाने वाला है जबकि प्राप्त समाचार व सर्वेक्षणों के परिणाम इस बात के सूचक हैं कि वर्ष 2016 की तरह इस साल भी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को अधिक वोट मिलेंगे। बहरहाल चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति के चयन में प्रत्यक्ष रूप से इस देश की जनता की भूमिका नहीं होती है इसलिए इस बात की संभावना है कि कम वोट प्राप्त करने वाला एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी समाज में मौजूद दरार और गहरी हो जाएगी।
इसराइल के भीतर संकटों के समाधान में अक्षम होने के कारण हजारों ज़ायनियों ने तेल अवीव, कोस हैफा और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्र में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में तेजी आ गई है क्योंकि दो दिन पहले साइबर हमलों के कारण बिजली कट गई थी जिसकी वजह से अतिग्रहित क्षेत्रों में रहने वाले दो तिहाई ज़ायनी पूरी तरह अंधेरे में थे। खालिद सबरना की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
इसराइल के भीतर संकटों के समाधान में अक्षम रहने के कारण हजारों ज़ायोनियों ने तेल अवीव, कुद्स, हैफा और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्रों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में तेजी आ गई है क्योंकि दो दिन पहले साइबर हमलों के कारण बिजली कट गई थी। इसकी वजह से अतिग्रहित क्षेत्रों में रहने वाले दो तिहाई से अधिक ज़ायोनी पूरी तरह से अंधेरे में चले गए थे। कुछ सुरक्षा सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि तीन बिजली घरों की बिजली साइबर हमलों के कारण कट गई थी। इसराइल के कुछ सुरक्षा सूत्रों ने भी साइबर हमलों के कारण वहां की बिजली के कट जाने की खबर का खंडन नहीं किया। प्रतिरोध के मिसाइलों के मुकाबले में इसराइल की आयरन डोम रक्षा दीवार के विफल हो जाने के बाद अब उसकी साइबर रक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये विषय सिद्ध करता है कि इसराइल के भीतर की स्थिति कमजोर है। ज़ायोनी शासन प्रतिरोध के मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है जो शासन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उपेक्षा करता है और दुनिया से दुश्मनी मोल लिए हुए है। निश्चित रूप से वेनेजुएला, इंडोनेशिया, अल्जीरिया और अरब युवा में उसके दुश्मन होंगे
ही।
अवैध ज़ायोनी शासन की परेशानी और व्याकुलता बताती है कि वो अब कितना कमजोर हो चुका है। फिलिस्तीन से IRIB के लिए खालिद सबरना की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा के मतदान का दूसरा चरण कल 3 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रतिस्पर्धियों पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है और इन्हें कर्म वीरों के तप के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। दिल्ली से शमशाद काजमी।
बिहार विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण का मतदान कल 3 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार जारी है, जिसके दौरान आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी पूरी तीव्रता से जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के युवा अध्यक्ष चिराग पासवान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को राजनीति विरासत में मिली है, जिन्हें कर्म वीरों के तप के बारे में कुछ पता नहीं है। अनुभवी और मंझे हुए राजनेता नीतीश कुमार को इस बार इस महत्वपूर्ण चुनाव में इन दो युवा नेताओं से टक्कर मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले को लेकर इस समय जेल में हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। तेजस्वी यादव ने इन चुनावों में बेरोजगारी, शिक्षा और भूखमरी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है और नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी ने अपने ताजा हमले में कहा है कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है।
15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार? महंगाई पे बोलना चाहिए। पलायन बिहार में है ही, बेरोजगारी है ही, गरीबी है ही, भुखमरी है ही। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
बिहार में भाजपा जनता दल यू गठबंधन से अलग हुए चिराग पासवान ने भी पत्र लिखकर नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद LJP और BJP मिलकर सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान ने इससे पहले कहा था,
मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है।
उधर भारत के 11 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए कल ही उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 7 और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। मतदान से एक दिन पहले आज बसपा प्रमुख मायावती ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी भाजपा से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की विचारधारा के विपरीत है और भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत दिनों मायावती पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया था। मायावती ने पहले कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो MLC के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए उनकी पार्टी भाजपा या किसी भी पार्टी का समर्थन करने को तैयार है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विश्व दर्पण पर। उससे पहले पैगम्बर इस्लाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष में पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 17 तारीख खास महत्व रखती है। इस उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं, जिसमें पैगंबर इस्लाम और उनके पौत्र इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शुभ जन्मदिवस के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
मित्रों, 17 रबीउल अव्वल ऐसी तारीख है जिसमें इतिहास की दो महान हस्तियों ने जन्म लिया। इन दोनों हस्तियों का मानवता के मार्गदर्शन में अमूल्य योगदान रहा है। शिया इतिहासकारों के अनुसार अंतिम ईश्वरीय दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम का जन्म 17 रबीउल अव्वल को हुआ था। इसी तारीख को उनके एक पौत्र इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी जन्म हुआ। पैगंबर इस्लाम और उनके पौत्र इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर हम आप सबकी सेवा में बधाई पेश करते हैं।
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمستا آیاموں سے ایک پریپورن و سرو شریشٹھ انسان تھے۔ ان پر وحی ارتھات ایشوریہ سندیش اترتے تھے۔ وہ انسانوں کو اجانتا سے نکالنے اور ان کی مکتی کے لیے آئے تھے۔ مہان ایشور پوتر قرآن کے سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں کہتا ہے، بے شک پیغمبر کا جیون تمہارے لیے آدرش ہے، اور جو ایشور کی دیا اور پرلے کے دن کی آشا کرتے ہیں وہ اسے ادھک یاد کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی شکشاؤں کے ذریعے اتیاچار، اسمانتا، اتپیڑن اور بکھراؤ کے شکار سماج کو ایک جٹ کر دیا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستیہ کے مارگ سے ہٹانے کے لیے حالانکہ بہت سے پریاس کیے گئے، کنتو ان کو ہٹانے والے اپنی یوجناؤں میں سفل نہیں ہو سکے۔ اس بارے میں سورہ صف کی 8ویں اور 9ویں آیتوں میں ایشور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو دوسرے سبھی دھرموں پر غالب کرے چاہے مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے۔
پیغمبر اسلام کا ویکتتو ایشور کو بہت پریہ ہے۔ سرشتی میں ایشور کو اپنے انتیم دوت سے سب سے ادھک لگاؤ اور سنیہ ہے۔ پیغمبر اسلام کو ایشور سے اتنی شردھا تھی کہ ان کے پرتی اس نے اپنی وشیش کرپا بھیجی ہے۔ ایشور نے لوگوں کے مارگدرشن کے لیے بھیجے گئے اپنے دوتوں میں سے کیول حضرت محمد کی ہی سوگند کھائی ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ سورہ ہجر کی آیت سنکھیا 72 میں ایشور نے پیغمبر اسلام کی قسم کھائی ہے۔ اس میں ایشور کہہ رہا ہے کہ ہے محمد، تمہاری جان کی قسم۔ پوتر قرآن کے پرمکھ ویاخیاکار عبداللہ بن عباس اس آیت کے سندر میں لکھتے ہیں کہ ایشور کی درشٹی میں پوری سرشٹی میں کوئی بھی انتیم ایشور یا دودھ حضرت محمد سے اچھا نہیں تھا۔ یہاں پر وشیش بات یہ ہے کہ ایشور اپنے انتیم دودھ کو اتنا ادھک پسند کرتا ہے کہ اس نے سارے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد کے لیے پریم کو انیواریہ بنا دیا ہے۔ ان سے پریم مسلمانوں کے ایمان کی نشانی ہے۔
یہ بات بھی الیکھنی ہے کہ یہ پریم دنیا کی سبھی چیزوں کے پریم کے اوپر ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت سنکھیا 24 میں اس بارے میں کہا گیا ہے کہ ہے پیغمبر، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ یدی تمہارے پتا، تمہارے پتر، تمہارے بھائی، تمہاری پتنیاں، تمہارے پریجن، تمہارے دوارا کمایا گیا مال اور وہ ویاپار جس کے مند پڑ جانے کا تمہیں بھے رہتا ہے، تتھا تمہارے گھر جنہیں تم بہت پریہ رکھتے ہو، تمہاری دشٹی میں ایشور اس کے پیغمبر تتھا اس کے مارگ میں جہاد سے ادھک پریہ ہیں، تو پرتیکشا کرو یہاں تک کہ ایشور اپنا فیصلہ تمہارے سمکش لے آئے، اور ایشور اوگیا کاریوں کا مارگ درشن نہیں کرتا۔
کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں जिनसे मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले प्रेम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पैगंबर इस्लाम से प्रेम की एक निशानी यह है कि उनकी कही हुई बातों को मानते हुए उनको व्यवहारिक बनाया जाए। निसंदेह अगर कोई किसी से प्यार करने का दावा करता है किंतु उसकी कही हुई बातों को नहीं मानता और उनको कोई भी महत्व नहीं देता, तो फिर हर व्यक्ति ऐसे दावेदार को झूठा कहेगा। इसकी वजह यह है कि मोहब्बत का अर्थ यह है कि जिससे प्रेम किया जाए उसकी हर बात को माना जाए। इस बारे में सूरह निसा की 59वीं आयत में ईश्वर कह रहा है कि हे ईमान वालों, ईश्वर का आज्ञा पालन करो तथा पैगंबर और स्वयं तुम में से ईश्वर द्वारा निर्धारित लोगों की आज्ञा का पालन करो। यदि किसी बात में तुम में विवाद हो जाए तो उसे ईश्वर की किताब और पैगंबर की ओर पलटाओ। यदि तुम ईश्वर और प्रलय पर ईमान रखते हो, निसंदेह विवादों को समाप्त करने के लिए ये पद्धति बेहतर है और इसका अंत अधिक भला है।
अनवारे मोहम्मद से अनवारे मोहम्मद से ता अर्श को जाला है। रहमत आलम है महबूब निराला है।
रहमत आलम है महबूब निराला है।
ऐसा तो बशर हमने देखा है न भाला है।
ऐसा तो बशर हमने देखा है न भाला है।
बेहतर से भी बेहतर है आला से भी आला है।
बेहतर से भी बेहतर है आला से भी आला है।
बेहतर से भी बेहतर है आला से भी आला है।
खुद नूर के सांचे में खुद नूर के सांचे में अल्लाह निकाला है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सबसे अहम विशेषताओं में से एक अमानतदारी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें अर्थात ईश्वरीय दूत को ईश्वरीय धर्म को प्राप्त करने और उसे लोगों तक पहुंचाने और इसी तरह ईश्वरीय रहस्यों की रक्षा में अमानतदार होना चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अमानतदारी उनके युवा काल से ही लोगों में मशहूर हो चुकी थी। उनकी इसी विशेषता ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए लोगों को आकृष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सच्चाई और उनकी अमानतदारी इस बात का भी कारण बनती है कि हम उन्हें अपनी जीवन शैली का आदर्श बनाने में थोड़ा सा भी ना हिचकिचाएं और वे अनन्य ईश्वर की ओर से हमारे लिए जो शिक्षाएँ लेकर आए हैं उसके सामने हम अपना सर झुका दें। निश्चित रूप से ईश्वर के प्रिय बंदों के व्यवहार और उनकी जीवन शैली का अध्ययन इस बात का कारण बनता है कि हम स्वयं को ईश्वरीय पहचान के इस महान स्रोत से जोड़ लें और लोक परलोक के कल्याण से लाभान्वित हों।
पवित्र कुरान और पैगंबर इस्लाम की सुन्नत अर्थात उनकी जीवन शैली का अध्ययन करके हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस्लाम के इन दो महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान स्रोतों की ओर से मुसलमानों के मध्य एकता पर बहुत बल दिया गया है। इस्लामी एकता को व्यवहारिक बनाने के लिए महान ईश्वर की ओर से बहुत सी आयतें नाजिल हुई हैं। पवित्र कुरान की विभिन्न आयतों में एकता पर बल दिया गया है और मुसलमानों के मध्य एकता को मजबूत करने के प्रभावी मार्गों को बयान किया गया है। पवित्र कुरान एकता को एक विभूति के रूप में याद करता है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में हम पढ़ते हैं कि सब लोग ईश्वर की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग न हो और ईश्वर की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में प्रेम उत्पन्न कर दिया और तुम लोग उसकी कृपा से एक दूसरे के भाई बन गए और तुम लोग आग के मुहाने पर थे कि उससे तुम्हें बचा लिया। इस प्रकार ईश्वर अपनी निशानियों को बयान करता है ताकि शायद तुम्हारा पथ प्रदर्शन हो जाए।
दोस्तों, 17 रबीउल अव्वल को इस्लाम की एक और महान हस्ती का जन्म हुआ था। आज ही के दिन पैगंबर इस्लाम के पौत्र एवं शिया मुसलमानों के छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। وہ سن 80 ہجری قمری میں پوتر نگر مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام دھرم کے پرچار ایوم پرسار کے لیے بہت ادھک کام کیا۔ امام جعفر صادق کے کال میں وبھن مت و سمپردائے استتو میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سماج میں کافی ویچارک پت بھرشٹتا و گمراہی پھیل چکی تھی۔ امام نے ان گمراہیوں کا مقابلہ کرنے اور وشدھ اسلام کے پرچار اور پرسار کے لیے ہزاروں ششیوں کا پرشکشن کیا تھا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیغمبر اسلام سے کیول خون کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ انتم ایشوریہ دودھ کی ہی بھاتی سدگنوں، نیتک سدھانتوں، دوردرشتا و ایشوریہ گیان سے پریپورن تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کا ونشج ہونے کے کارن ویاپک گیان ایوم نیتکتا جیسے انیک سدگن ایوم وشیشتائیں وراثت میں ملی تھیں۔ یہی کارن ہے کہ وہ اپنے کال میں گیان کے شکھر پر تھے۔ انیک اتہاسکاروں و مسلم دھرم گروؤں کا کہنا ہے کہ اپنے کال میں امام صادق سے بڑا کوئی گیانی نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے بیچ ایک مضبوط رسی کی طرح تھے، جسے تھامے رہنے سے مسلمانوں کے بیچ ایکتا بنی ہوئی تھی۔ اتہاس میں ورنت ہے کہ لوگ مدینہ نگر، ان کے آس پاس کے کھیتروں اور دور دراز کے علاقوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیان پراپتی کے لیے آتے تھے۔ امام صادق کے ششوں کی سنکھیا ہزاروں میں بتائی گئی ہے، جو وبھن وشیوں میں ان سے گیان ارجت کیا کرتے تھے۔ ان گیانوں میں بھوتک شاستر، درشن شاستر، دھرم گیان، اتہاس، رسائن شاستر، کھگول شاستر اور ساہتیہ آدی سارے ہی پرچلت گیان شامل ہیں۔
متروں، پیغمبر اسلام اور ان کے پوتر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے افسر پر پناہ ہم آپ سب کی سیوا میں بدھائی پیش کرتے ہیں۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
وشو درپن۔ विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हमारी चर्चा का विषय है पश्चिम में इस्लामोफोबिया। यूं तो जैसे जैसे पश्चिमी देशों में लोगों का इस्लाम के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, वहां की सरकारों की ओर से इस्लाम और मुसलमानों से डराने का षड्यंत्र भी व्यापक हो रहा है। पश्चिमी देशों में सबसे आगे फिलहाल फ्रांस है, जहां कई वर्षों से मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। हालिया दिनों में जब एक बार फिर पैगंबर इस्लाम के अपमानजनक कार्टूनों को प्रकाशित किया गया, तो उसके बाद एक हत्या को बहाना बनाकर व्यापक रूप से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सरकारी स्तर पर प्रोपेगेंडा आरंभ कर दिया गया। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां आगे आगे नजर आए।
Bonjour, messieurs, dames. Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire.
पश्चिम इस्लामोफोबिया के इतिहास काफी पुराना है। पाकिस्तानी बुद्धिजीवी और या मकबूल के विचार,
हमारे यहाँ ये तस्वर पाया जाता है कि ये 9/11 के बाद कुछ अचानक के पौधा खड़ा हो गया है, जिसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। ऐसा नहीं है। पोप ऑफ वेटिकन सिटी ने कम से कम 150 ऐसे मुअर्रखीन को एम्प्लॉय किया कि जिन्होंने इस्लाम के बारे में किताबें लिखना शुरू की और ओरिजिनल सोर्सेस लेके किताबें लिखनी शुरू की। सबसे पहली किताब जो आप हैरान होंगे ट्रांसलेट हुई है उन जगहों पे, वो थी तारीख तिबरी। अब यूरोप का सहाफी जिस वक्त बर्मिंगम में किसी मुसलमानों की कम्युनिटी के अंदर गुफ्तगू करने जाता है और उसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करता है, तो कहता है मैं तो ऐसा करता हूं स्टैनले पॉल की किताब निकाल के पढ़ लेते हैं। इस सारे तस्वर में तीन चीजें मुसलमानों के बारे में आप किसी बच्चे के पास यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जब पढ़ता है, यहां तक के पाकिस्तान के किसी भी ओ लेवल ए लेवल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उससे मुसलमानों की जो तस्वीर पेंट हुई है वो एक है कि मुसलमान वो चीज है कि जो शहरे से इंतहाई खौफनाक लगता है, बड़ा उजड और जाहिल और गंवारा, और हाथ में उसके तलवार है। दूसरा तस्वर यह है कि उसकी एक बहुत बड़ी हरम सरा है जिसके अंदर लातादाद कनीजे हैं और कई औरतें हैं और वो उसके साथ रहता है। और तीसरी तस्वीर यह है कि ऊंट के अलावा वो किसी और चीज को सुन्नत नहीं समझता, वो जदीद टेक्नोलॉजी का इसका दुश्मन।
पश्चिम इस्लामोफोबिया का इतिहास पुराना है, लेकिन अब उसे नए तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों के बेहद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अल अजहर के प्रमुख शेख अहमद अत्तैयब ने भी अपने एक भाषण में पश्चिम में इस्लामोफोबिया पर खेद प्रकट करते हुए इस्लामी बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी पर बल दिया और कहा कि पश्चिमी देशों में मीडिया और सरकारी स्तर पर इस्लाम से डराया जा रहा है और पश्चिमी समाज में मुसलमानों और इस्लामी देशों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कुप्रचार किया जा रहा है और इसके लिए अरबों डॉलर का बजट खर्च किया जा रहा है।
اتحدث عن الاسلاموفوبيا تلكم الكلمه اللقيطه والتي ما فتئ علماء المسلمين ومفكروهم الاحرار يفندونها।
पश्चिम इस्लामोफोबिया की लहर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी आहत नजर आए, इसीलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशन में अपने भाषण में भी ये मुद्दा उठाया।
Mr. President, the pandemic was an opportunity to bring humanity together. Unfortunately, it has instead fanned nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed.
Canada ke Pradhan Mantri Trudeau ne bhi Islam aur Musalmanon ke samarthan mein bahut kuch kaha.
Well, if M103 condemning Islamophobia actually gets people to notice that there are people uncomfortable with that idea, that there are people who still have problems with the idea that we would condemn discrimination against Muslims, then we have to know. We have to expose that, and we have to deal with it as a society. Because if this room isn't a reflection of what's happening in our streets, in our towns, in our communities, then we're not dealing with the real things that Canadians expect us to deal with. So do we have a problem with Islamophobia in this country? Yes, we do. Do we have a problem?
لیکن ان سب سے بے پرواہ فرانس کے راشٹرپتی نے اسلام فوبیا کا ابھیان شروع کر دیا ہے حالانکہ ترکی کے راشٹرپتی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ میکرا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ اتہاس پڑھو تم نے الجیریا میں 10 لاکھ لوگوں کی ہتیا کی روانڈا میں 8 لاکھ لوگوں کی ہتیا کی تم نے لیبیا میں دسیوں ہزار لوگوں کی ہتیا کی اوٹومن کے روپ میں ہم وہاں مانوتا لے کر گئے اور ہم نے شانتی استھاپت کی
ماکرون سینن زاتن سورن اسکل Gidicisin. Gidicisin. Önce ben sana birkaç yıl önce ne demiştim?
میکرا کے بیان کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں میں غصہ ہے اور وہ پردرشن کر رہے ہیں بنگلہ دیش پاکستان اور بھارت میں مسلمان کافی غصے میں نظر آئے
فرانس کے صدر نے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے اس سے نہ صرف بمبئی بلکہ پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہے
پشچم میں اسلام فوبیا کے کارنوں پر چرچا کرتے ہوئے بیلجیم کے راجنیتک ٹیکہ کار محمد فیصل خان کہتے ہیں
یہ یورپ میں یہ تماشا جو ہے آج یہ نیا نہیں ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا چارلی ایبڈو کا بھی آپ کو پتا ہے ڈنمارک میں بھی یہ خاکے بنائے گئے یہ اصل میں ایک منظم ایک مبینہ پلان ہے اور اس پلان کے پیچھے صہیونی قوتیں بھی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کو آمنے سامنے لا کر اپنے معاملات اور اپنے جو ان کے اہداف ہیں وہ پورے کرنا چاہتی ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے گا کہ فرانس کا جو ویسے بھی آپ کو پتا ہے اس کا کالونیل نظام ہے وہ آپ تمام یورپ کے جو کالونیل تھی ان سب سے زیادہ یہ ظالم تھے تو یہ چیز جو آج اس مرتبہ جو فرانس میں ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس کے پیچھے ہے صہیونی طاقتوں ہوں یا کوئی مغربی طاقتوں ہوں جو سلمان کو یا عالم اسلام کو کی جو پوزیشن کو خراب کرنا چاہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے جو مسلمانوں کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں وہ درحقیقت خود اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 25 اکتوبر 2018 کو جو یورپین یونین کی جو ہیومن رائٹ عدالت تھی اس نے ایک باقاعدہ ایک بیان دیا تھا اس نے ایک فیصلہ دیا تھا اور 7 جج اس کے اندر تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آزادی اظہار ہے آزادی اظہار کے اوپر کسی بھی دین کی یا کسی بھی مذہب کی اور خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ ان کی توہین یا ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ یہ توہین کے زمرے میں آتی ہے اس کے فیصلے کے باوجود یہ سارا کام جو ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر اور عالم اسلام کے اندر ابتری پھیلا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
اس بارے میں لندن سے ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی پشچم اسلام فوبیا کے ادیشوں پر پرکاش ڈالتے ہیں
اہداف تو بیسیکلی ایک تو اسلام کے ساتھ اور اسلام کا جو ایک پولیٹیکل ایکسپریشن ہے اس کو دیکھ کر اس کے خلاف ایک یعنی وہی سپرٹ اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. اور پھر یہ بھی ہے ایک سبسیڈری اس میں ایک یہ کارٹون اس طرح کی چیزیں پبلش کر کے مسلمانوں کو اس طرح سے یعنی وہ دنیا میں ان کا ایسا تعارف ہو جائے کہ یہ کوئی جنگجو اور شور مچانے والے لوگ ایجوکیشنسٹ ہیں. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کچھ لیول پر تو یہ جو اسلام کی فنکشن ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ڈیوائن گائیڈنس ہیومن ویلفیئر کے لیے, تو اس کا مقابلہ تو سیکولرزم کافی وقت سے کر رہا ہے. سیکولرزم اس بات کو قطعاً اجازت ہی نہیں دی انسانی اجتماعی امور میں کوئی خدائی امن دخل ہو. اصل جو گستاخی ہے یعنی اصل جو بلاسفیمی ہے وہ وہیں پر ہے کہ جب آپ اسلام کو ایک ڈیوائن گائیڈنس کے طور پر جب آپ اس کو جھٹلائیں, جب آپ اس کو نہ مانیں, تو اصل اسلاموفوبیا تو وہیں سے آتا ہے. وہ اصل چیز ہے.
तो दोस्तों अभी आपने कार्यक्रम विश्व दर्पण सुना. हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा. कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए. हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और विस्तृत समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट का पता नोट कर लें. पता है partstoday.com/hi. तो दोस्तों इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है. मुझे मरियम मिर्दादी को अनुमति दीजिए. खुदा हाफिज. Thank you.